पिछले दो दिनों में कथा की गति अवसर्पिणी काल के वर्णन से प्रारंभ करते हुए श्रीपाल के जन्म तक पहुंची। अंग देश की राजधानी चंपा नगरी, जिसको चंपापुरी भी कहा जाता है, वहाँ के नरेश, वहाँ के राजा अरिदमन और उनकी रानी कुंदप्रभा और उनकी नगरी आदि में जो सुख शांति समृद्धि थी, इन सब का वर्णन राजा की न्यायप्रियता और प्रजा वत्सलता और नीति, इन सब का वर्णन आपने सुना। और देश के कल्याण के लिए मुख्य रूप से दो व्यवस्थाओं का बलवान होना अपेक्षित है, ये भी आपने सुना। वो दो व्यवस्था कौन सी है? न्याय व्यवस्था और शिक्षण पद्धति। क्योंकि न्याय सही मिलेगा प्रजा को, प्रजा सुखी रहेगी, और शिक्षा सही प्राप्त होगी तो सारे प्रजाजन साक्षर बनेंगे, अनपढ़ नहीं रहेंगे। और शिक्षा के जो विषय हैं वो भी उस काल में बड़ी सावधानी से चुने जाते थे। तो आज के वर्णन में जैसे जैसे श्रीपाल की बाल लीलाएं माता पिता देखते हैं और भी लोग देखते हैं तो वो अत्यंत हर्षित होते हैं, और हम बाल क्रीड़ाओं के साथ, अपनी चेष्टाओं के साथ, ये छोटा सा बच्चा धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगा, फिर लड़खड़ाते पैरों से उसने भूमि पर चलना प्रारंभ किया, फिर अपनी बाल वाणी अर्थात बच्चे की भाषा में उसने शब्दों का उच्चारण भी प्रारंभ किया और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसको राजकीय राजकुमार के सुंदर वस्त्र पहनाए जाते थे और खेलने के लिए भी उसके सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। लालयेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। ये पुरानी नीति है भारत की, 5 साल तक के बच्चों को कभी मारना पीटना नहीं, उनको भरपूर प्रेम देना, उनको लाड़ कराना, और 10 वर्षाणि ताड़ेत फिर 5 वर्ष की उम्र के पश्चात जब तक वह 15 वर्ष का हो जाता है तब तक उसको अनुशासित रखना। ये अनुशासन की आयु होती है 5 से 15 वर्ष, और फिर जब 16 वर्ष का हो जाता है तब उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करें। तो इससे वो ऐसा संस्कारित होगा बच्चा कि वो हमेशा माता पिता के प्रति समर्पित रहेगा और सदाचारी बनेगा। सजोद से सूरत आते समय 10 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता है, उस उसका नाम है उत्तरज। और उस गांव के जो मुखिया है, प्रमुख, शायद कोई प्रकाश भाई है, वो कई बार टेलीविजन पर साक्षात्कार दे चुके हैं, इंटरव्यूज दे चुके हैं। उनसे हमेशा पत्रकार लोग ये पूछते हैं कि आपके गांव में इस कलयुग में भी रामराज्य क्यों है, आपके यहाँ कोई शराब नहीं पीता, आपके यहाँ कोई मांसाहार नहीं लेता, आपके यहाँ कोई व्यसनी नहीं बनता, क्या बात है? तो उसने कहा, उस मुखिया ने, कि हमारे यहाँ ब्राह्मण जाति है, आदिवासी लोग भी रहते हैं, लेकिन हमने एक अनुशासन बना करके रखा है और हम ऐसे संस्कार देते हैं बाल्यकाल से हमारी प्रजा को कि हमारे यहाँ कोई मामला, कोई विवाद न्यायालय में नहीं जाता, अदालत के द्वार नहीं खटखटाता। ये सब संस्कारों का प्रभाव है। हमारे गांव में पला हुआ बच्चा हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए और विदेश भी क्यों ना चला जाए, वो कभी सिगरेट के कष्ट नहीं लेने वाला, वो कभी शराब नहीं पी सकता, वो कभी कोई व्यसन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कार देने की प्रणाली है वो पुरानी प्रणाली है, मॉडर्न पद्धति नहीं है। अब इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण और क्या हो सकता है आज के कलियुग में? तो संस्कार की जो सबसे प्राग भूमिका है वो ये है, लाली पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे को भरपूर प्रेम दो। लेकिन उस प्रेम में आपका संयम भी साथ चल के, क्योंकि अगर माता पिता अनर्गल प्रवृत्ति करते हैं तो बच्चे पर उसका दुष्प्रभाव पड़े बिना रहता नहीं है। पिता को स्कूटर चलाते हुए देखने वाला बच्चा घर में अपनी छोटी सी ट्राईसाइकिल को भी स्कूटर के समान मुंह से आवाज निकाल कर ट्रर्र करके चलाता है। बच्चा डेमो से ज्यादा सीखता है, ऑडियो से कम सीखता है, उसको वीडियो चाहिए। समझ में आ रही बात? सीधा सीधी बात यह है कि उसको उपदेश की जरूरत नहीं है, उसको प्रत्यक्ष दृश्य की जरूरत है। तो 5 साल तक उसको प्रेम दीजिए और प्रेम देते समय अपना संयम भी उसको देखने मिले, इस तरह का आप आचरण करिए। आप अपने माता पिता का कितना आदर करते हैं वो उसको देखने दीजिए। उसको ये मत सिखाइए कि इनके पैर छुओ, आप पैर छुओगे तो वो छुएगा। आप अपने माता पिता का आदर करेंगे तो बच्चा अपने माता पिता का आदर करेगा। सीधा सरल उपाय है। और भगवान के पास जाकर आप उसको ऑर्डर मत दीजिए, ढोक दे, उसको क्या मालूम ढोक देना क्या होता है। आप ढोक देकर बतलाइए और फिर उससे प्रेम से कहिए कि बेटे देख ऐसा कर जैसा हम लोग कर रहे हैं। तुरंत करेगा, जब वो देखेगा कि 2 लोग कर रहे हैं तो फिर वो सोचेगा कि अरे मैं तो अलग खड़ा हूँ। नहीं, वैसे देखा जाए तो मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, यानी वो दूसरों को देखकर बहुत सारी चेष्टाएं करता है, यहाँ तक के कि जो नहीं करना है वो भी देखकर करता है। अब किसी फिल्म को देखने के बाद बच्चा किसी के कॉलर पकड़ करके बोलता है, फिल्म देखने के बाद उसकी एक्टिंग करता है। तो आप उसको दर्शाइए, जो आप चाहते हैं वो आप करिए तो फिर आप उसमें वो चीज़ पाएंगे। तो 5 वर्ष तक उसको भरपूर प्रेम दीजिए, 10 वर्षाणि ताड़ित, और फिर जो 5 वर्ष के बाद वाले 10 वर्ष हैं उन 10 वर्षों में उसको अनुशासित कीजिए। चंचल होता है बच्चे का मन, वो सहपाठियों के साथ कई चीज़ें नई नई सीखता है, लेकिन उसको अनुशासित कीजिए, वो अनुशासित हो जाएगा और फिर 15 साल तक संस्कारित हुआ, उसको धर्म की शिक्षा अधिक भी देना है और बहुत सारी चीज़ें सिखलाना है। 15 साल तक सिर्फ अनुशासन नहीं सिखाना, अनुशासन के साथ बहुत सारा ज्ञान भी देना है उसको। और उसके बाद जब 16 वर्ष का हो जाए तब उसके प्रति मित्र जैसा बर्ताव करें। एक दिन एक घटना हमने सुनी थी, किसी इंटरव्यू में एक माता से इंटरव्यूअर ने, प्रश्नकर्ता ने सवाल पूछा कि आपका लड़का हॉस्टल में जा रहा है रहने के लिए और कॉलेज की पढ़ाई करने जा रहा है, सहपाठियों की संगति में कहीं उसने व्यसन शुरू कर दिए तो? तब माँ ने जवाब दिया कि मुझे विश्वास है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तब उसने सवाल किया कि हर माँ ऐसा विश्वास करती है? वो बोलती है कि मेरी बात थोड़ी अलग है। क्या अलग है आपकी बात? बोले मेरे और बेटे के बीच एक करार हुआ है, एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ है। वो क्या? बोले कि बेटे तू जा रहा है ना, जैसे गांधी जी की माँ ने अपने बेटे को विदेश भेजने से पूर्व गुरु की साक्षी में 3 नियम दिलाए थे, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है ऑटोबायोग्राफी में, और सत्यनाम प्रयोग करके गुजराती नाम किताब है उसमें भी उन्होंने वो चीज़ बताई है कि कभी भी वाइन वुमन और मीट, मतलब महिला, मदिरा और मांस, इनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखना। इन तीनों का व्यसन जिसको लग जाता है वो बर्बादी की राह पर बढ़ जाता है, इसलिए इन 3 व्यसनों का तुझे त्याग करना है। उन्होंने जीवन में उसका त्याग कर दिया था। तो मेरे बेटे से मेरी चर्चा हुई है और मैंने उसको शपथ दी है कि अगर तुझे वहाँ हॉस्टल में कोई चीज़ पसंद ज़्यादा है, तेरे दोस्त लोग बहुत कुछ करते होंगे और तुझे उसमें से कोई चीज़ पसंद आया, अगर तुझे सिगरेट पसंद आया तो मेरी पूरी छूट है, तू बिल्कुल सिगरेट पीना। अगर तुझे शराब पसंद आ जाए तो ज़रूर शराब पीना। अगर तुझे कोई भी व्यसन प्रिय हो तो तू ज़रूर करना, लेकिन एक शर्त पर, जो भी चीज़ तुझे पसंद आए, तेरी वह पसंदीदा वस्तु सबसे पहले मुझे और अपनी बहन को ला करके देना। समझ में? अगर तुझे सिगरेट पसंद हो तो सिगरेट को सबसे पहले कश मुझे दिलाना। शराब पसंद हो तो बॉटल लेकर पहले अपनी बहन को और मुझे पिलाना, फिर तू भी। तब वो इंटरव्यू बोलता है कि अब समझ में आ गया कि तुम्हारा बेटा कभी व्यसन नहीं कर सकता। ये संस्कारों की बात है, सिर्फ किताब पढ़ाने से, तोता रटंत से बच्चे संस्कारित नहीं होते। हमने देखा है कि खुद हमारे कुछ विद्यार्थी जिनको हमने बाल शिक्षा में बहुत सुंदर सुंदर पाठ याद कराया था, कई कहानियाँ सुनाई थी, कई शास्त्रों की कथाएं भी उनको बतलाई थी, उनमें से कुछ बच्चे सही रास्ते पर नहीं हैं, कुछ बच्चे आज बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद सिगरेट पी रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरे व्यसनों में चले गए, कुछ सही रास्ते पर हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिर्फ ओरल ज्ञान से, माने सिर्फ मौखिक ज्ञान से संस्कार नहीं पड़ते, संस्कार उनके जीवन में, उनके आचरण में डालने पर काम आते हैं। और वो कोई टीचर नहीं डाल सकता, टीचर एक सीमा तक बच्चों को संस्कार दे सकता है, लेकिन उसकी सारी परवरिश, सारी देखरेख उसके माँ बाप को करनी होगी। माँ बाप अगर धंधे पर चले जाए, माँ कहीं जॉब पर जा रही है और पिता कहीं दूसरी तरफ ड्यूटी में जा रहा है, और बच्चे घर पर अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, तो हमेशा खतरा बना रहता है। आप ये देखिए कि कितने समय पर वो घर लौट करके आते हैं, उनकी संगति कैसी है, उनकी भाषा कैसी है, वो आपके साथ कितने अदब से पेश आते हैं, वो पढ़ाई में कितना मन लगाते हैं, किस तरह के गाने पसंद करते हैं, कैसी फिल्मों को देखने में उनकी रुचि है, इन चेष्टाओं को देखने मात्र से माँ बाप परख सकते हैं कि बच्चा किस दिशा में है। और उसकी दिशा को सुधारने के लिए संगति को सुधारना जरूरी है। और आज के युग में कितना भी गुमराह नवयुवक क्यों ना हो, कैसा भी भटका हुआ विद्यार्थी या फिर कोई बहन क्यों ना हो, एक हफ्ते में उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है। थोड़ा आपको कड़क होना पड़ेगा, आपकी ढील के कारण वो बिगड़े हैं, आप सुस्त हो गए तो वो भटक गए, आप चुस्त हो जाओ वो सही रास्ते पर आ जाएंगे। आप जानना चाहोगे क्या उपाय है? अभी तो श्रीपाल राजा की जो कथा है उसमें तो बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें आएंगी, लेकिन ये थोड़ी सी व्यावहारिक चर्चा हमने बीच में ले ली, तो वो तरीके ये हैं। हमें एक नवयुवक ने ही आकर के बताया था कि जितने भटके हुए नवयुवक हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए माँ बाप को सिर्फ तीन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाना है, और वो भी एक हफ्ते के लिए। भटका हुआ नवयुवक भी सही रास्ते पर आ जाए, कठोर होना पड़ेगा। सुन रहे हैं आप ध्यान से? पहली चीज, उसका मोबाइल बंद कर देना। तीनों का नाम म से शुरू हो रहा है, मोबाइल, सेकंड मोटरसाइकिल, थर्ड क्या हो सकता है म से शुरू हो, मनी, जानते हो मनी का अर्थ पैसा। ये तीन चीजें अगर आप प्रतिबंधित कर दें एक हफ्ते के लिए, तो उसको अपने आप माता पिता का मूल्य समझ में आ जाएगा। जो उसके भाव बढ़ गए थे ना संगति में, वो सिर्फ इन तीन चीजों के कारण बढ़े थे। ये तीन चीज आप जब्त कर लो, होश ठिकाने आ जाएंगे, वो आपके चरण स्पर्श करेगा। ऐसे भी कहते हो साम दाम दंड भेद, चार प्रकार की नीतियां हैं। जब कोई घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, फिर बाद में उसको समझा देना कि तू हाथ से बाहर जा रहा था इसलिए हमें रस्सी खींचनी पड़ी। ऐसा मत समझना कि हमें तुझसे घृणा है, हम तुझे नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल मत समझना, ये तेरी गलत फहमी हो जाएगी। सिर्फ तुझे अनुशासित करने के लिए हमने ये काम किया है, अब ध्यान रखना, माता पिता के महत्व को भूल मत जाना। 15 साल की उम्र तक तुझे क्या आता था, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया? 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया और तुझे माता पिता का भूल ली, विस्मृत हो गया, तू क्या समझने लगा अपने आप को? होश में आ जा, ज्यादा होशियारी मत बता, होश में आ जा, सही हो जाए। एक बार बस ऐसा बोलना पड़ता है। आप हमेशा के लिए अगर ढीला रहोगे और ये सोचोगे कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा, उसको ठेस लग जाएगी, अरे काय की ठेस लग जाएगी, वो आपको कितनी ठेस लगा रहा है ये नहीं सोच रहे। एक बार उसको अनुशासित करना होगा, फिर जीवन भर वो ठीक से रहेगा। थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ता है। एक विद्वान ने कहा था कि 10:90 का रेशियो होता है रिलेशनशिप्स में, 10 और 90। कोई भी इंसान अपनी 91 बात नहीं मनवा सकता किसी से, 90 बात तक मनवा सकता है, लेकिन 10 बात उसकी भी उसको माननी पड़ेगी। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो रिश्ते निश्चित रूप से बिगड़ जाएंगे या टूट जाएंगे। एक बेटी थी जो शास्त्र पुराण आदि पढ़कर और गुरुओं की वाणी सुनकर ध्यान में रुचि लेने लगी और 4-4 घंटे तक वो साधना करने लगी। उसके माँ बाप उखड़ गए, बोले कि कुछ घर का काम करती नहीं है और ये क्या तरीका है, साधना साधना साधना। तो फिर उसको बहुत बुरा लगा कि मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ फिर भी माँ बाप नाराज हो रहे हैं, जिनके बच्चे शराब पीते हैं उनके माँ बाप तो कुछ बोलते नहीं, और मैं मेडिटेशन करती हूँ और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ती हूँ और अच्छे अच्छे उपाय करती हूँ ध्यान साधना के, और मेरे माँ बाप मेरे से नाराज होते, कैसे माँ बाप मिले मेरे। तो फिर वह एक गुरु के पास गई और पूछा कि मैं क्या करूँ। तो उन्होंने पूछा कि तू करना क्या चाहती है, बोले मैं 8 घंटे ध्यान करना चाहती हूँ। शाबाश, 8 घंटे ध्यान करना चाहती है और तेरे माँ बाप क्या चाहते हैं? वो बोले मुझे 4 घंटे भी ध्यान नहीं करने देना चाहते। बोले कि 4 घंटे तो ध्यान करती है? हाँ करती हूँ। तो वो लोग रोकते हैं? नहीं उस समय तो नहीं रोकते। बोले तो बोले कि तू अगर 4 घंटे ध्यान करती रहेगी तो फिर रोकेंगे भी नहीं, लेकिन तू कुछ काम उनके लिए भी कर दिया कर, उनको चाय परोस दिया कर, उनको नाश्ता बना दिया कर, 2-3 घंटे उनके लिए दे दे, तो तुझे साधना के लिए और अधिक समय मिलेगा और वो प्रेम से तुझे करने देंगे। तू उनकी सेवा नहीं करती इसलिए वो नाराज होते हैं, तू साधना करती इसलिए कोई नाराज नहीं होता। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए कुछ उनकी कुछ अपनी, ये सूत्र है। अगर आप सारी अपनी चलाओगे तो फिर व्यवहार बिगड़ जाएगा, अशांति फैल जाएगी। थोड़ी उनकी खुशी थोड़ी अपनी खुशी, और अगर वो ज्यादा प्रेशर डालते हैं तो फिर उनकी तरफ से व्यवहार बिगड़ रहा है, अपन तो नहीं बिगाड़ रहे। तो जब श्रीपाल धीरे धीरे बड़े हुए और 8 वर्ष के हो गए, ये आनुषंगिक वर्णन कथा के साथ में कुछ जानकारी की बातें भी यहाँ पर दी गई है, तो उसमें जो कथा का क्रम है वो थोड़ा सा अवरुद्ध होता है, लेकिन जानकारी की बातें आपको मिलती है तो उससे आपको लाभ हो सकता है। तो जब 8 वर्ष के हुए तब जैन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है, आगभ्य ही अट्ठवासन, जब कोई मनुष्य गति को प्राप्त होकर गर्भ से 8 वर्ष की उम्र को पूर्ण करता है तब वह धर्माचार का अधिकारी होता है। अर्थात वह बालक तब अष्टमूल गुण धारण करने का पात्र बनता है, अभिषेक पूजा और गुरुओं को आहार दान आदि भी वो उस वय में देने का अधिकारी बनता है। और साथ में यदि उसके अंदर विवेक और वैराग्य जितना अपेक्षित है उतना प्रकट हो जाए तो वो 8 वर्ष की उम्र में रत्नत्रय का भी पात्र बन जाता है। अभी इस चतुर्मास में दशलक्षण धर्म से पूर्व एक कथा महोत्सव हुआ था, कतार धाम में नहीं लेकिन पर्वत पाटिया में। उसमें एक वृषभ सेन नामक मुनिराज की कथा थी, जिन्होंने 8 वर्ष की उम्र में घोर उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके निर्वाण धाम को प्राप्त कर लिया था 8 साल की उम्र में। कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो 8 साल की उम्र में कपड़े भी ढंग से नहीं पहन पाते, लेकिन उन्होंने कपड़े उतार कर कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। तो जब श्रीपाल 8 वर्ष के हुए तो राजा रानी दोनों मिलकर मंदिर जी में विराजमान जो गुरुदेव थे निर्वृत्त गुरु, उनके चरण सानिध्य मिले गए और प्रार्थना की कि हे गुरुवर, ये राजकुमार हमारा पुत्र 8 वर्ष का हो चुका है, अब इसको अष्टमूल गुण प्रदान कीजिए, क्योंकि गुरु साक्षी में धारण किए हुए व्रत सार्थक होते हैं, आप इसको अष्टमूल गुणों की व्रत दीजिए। अष्टमूल गुण आप ही इनको समझाइए। तब गुरु महाराज उस बालक को अत्यंत विनम्र भाव से आकर गुरु को प्रणाम कर रहा था, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं हे श्रीपाल, जीवन पर्यंत के लिए इन अष्टमूल गुणों को 8 वर्ष की वय में जैन परंपरा अनुसार जो बालक होता है वह यज्ञोपवीत संस्कार पूर्वक अंगीकार करता है। यज्ञोपवीत की परंपरा मूलतः जैन परंपरा है, फिर ब्राह्मणों में भी उसका प्रचलन है, लेकिन मूलतः जैन परंपरा है। तो यज्ञोपवीत को आजकल की सरल भाषा में जनेऊ कह सकते हैं। तो उसके साथ अष्टमूल गुण धारण करके वह बालक संस्कारित होता है और फिर गुरु सानिध्य में वो पढ़ना प्रारंभ करता है। तो श्रीपाल को गुरुदेव समझाते हैं कि 3 मकारों का त्याग जीवन भर के लिए तुम्हें करना होगा। वैसे भी तुम ऐसे परिवार में जन्मे हो जहाँ इन वस्तुओं का सेवन नहीं होता, लेकिन तो भी सेवन न करने में और सेवन न करने का संकल्प करने में अंतर होता है। आज तुम 8 वर्ष के हो गए, इसलिए अब संकल्प लेना तुम्हारे लिए हितकर होगा। और उसके लिए मुख्यतया एक तिथि चुनी गई है आचार्यों के द्वारा, बहुत सारे संघों में ये परिपाटी है कि रक्षाबंधन के दिन जिन जिन के बच्चे 8 साल के हो जाते हैं उनको ये संस्कार गुरु सानिध्य में दिए जाते हैं। तो श्रीपाल को गुरुदेव समझाते हैं कि 3 मकार होते हैं। म से प्रारंभ होने वाले शब्द मकार कहलाते हैं, मदिरा, मधु, मांस। इनका तुम्हें हमेशा के लिए त्याग करना होगा, क्योंकि इनका सेवन करुणावान मनुष्य नहीं करते, सदाचारी मनुष्य नहीं करते, इनका तुम्हें हमेशा के लिए त्याग करना होगा। और मांस से जुड़ी हुई जो अन्य वस्तुएं भी हैं, अंडा मछली आदि, इनका भी हमेशा के लिए तुम्हें त्याग करना होगा। मदिरा से जुड़ी हुई जो अन्य वस्तुएं हैं, बियर, आसव, अरिष्ट, सुरा, इन सब का भी तुम्हें हमेशा के लिए त्याग करना होगा। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं आयुर्वेद में, द्राक्षासव, अशोकारिष्ट, कुमारी आसव, इनका भी तुम्हें त्याग करना होगा, क्योंकि ये भी 40 दिन में तैयार होती है। अंगूर के रस को अथवा घृत कुमारी के काढ़े को बंद करके 40 दिन तक के रखा जाता है, और फिर उसके अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं उसकी वजह से वो आसव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आसव, अरिष्ट और सुरा, मृत संजीवनी सुरा, ये चीज़ें जो औषध में मनुष्य लेता है, ये वस्तुतः मदिरा रूप है। इसलिए मांस, मदिरा और मधु, मधु का अर्थ होता है शहद, हनी, उसका भी तुम्हें त्याग करना होगा। तो ये तीन मकार और पांच प्रकार के फल होते हैं, बड़, पीपल, उमर, कठुमर। कठुमर का अर्थ अंजीर होता है। किराने की दुकान में ऐसे एक गोल आकार वाला, बीच में छेद वाला एक वो मिलता है ना, ड्राई फ्रूट की, वो फिक्स बोलते हैं उसको, अंजीर, वो कठुमर है। और पाकर, ऐसे पांच फलों का तुम्हें त्याग करना होगा। श्रीपाल ने, राजकुमार ने नियम ले लिया, बड़ सभी लोग जानते हैं, पीपल भी सब लोग जानते हैं, उमर भी एक फल होता है जिसको गूलर बोलते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, और कटुमर तो जानते ही हैं जी, और पाकर भी एक फल होता है। कौन सा फल होता है पाकर, किसी को मालूम है? नहीं, हमें भी नहीं मालूम। ये नाम हमने शास्त्रों में बहुत वर्षों से सुन रखा है, लेकिन ऐसे कभी देखने को नहीं मिला कि इस चीज़ को पाकर कहा जाता है। तो खोजने का विषय है, खोज सकते हैं अपन। क्या है आजकल तो नेट का ज़माना है, इंटरनेट का, पाकर कहीं कोश में देख लो, और संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी में देख लेना, और इंग्लिश में जो उसका नाम है उसको उसमें सर्च कर लेना, शायद मिल जाए। तो खोज करना और हमें भी बता देना आपको अगर मिल जाए तो। पाकर अष्टमूल गुण में इसका त्याग है, पर क्या है कि अब कभी सामने आता नहीं है इसलिए पता नहीं चलता। तो ऐसे आठ पदार्थों का त्याग कर देना अष्टमूल गुण है, इनको अष्टमूल गुण कहते हैं। आठ वस्तुओं का त्याग, अष्ट मूल गुण। और मुनियों के कितने मूल गुण हैं? 28। वो अष्टाविंशति मूल गुण है, और गृहस्थों के अष्ट मूल गुण हैं। अब इन मूल गुणों के विषय में आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्ध उपाय के 74वीं गाथा में लिखा है, अष्टावनिष्ठ दुस्तर दुरीतायतरान्यमूनि परिवर्ज्य जिन धर्म देश नाया भवन्ति पात्राणि शुद्ध दियः। जिन धर्म की देशना अर्थात जिन वाणी का उपदेश किसको दिया जाता है, बोले पात्राणि, पात्रों को दिया जाता है। पात्र कौन होते हैं? तो बोले इन 8 वस्तुओं का जिन्होंने त्याग किया है वो जिनवाणी के उपदेश के पात्र हैं, जिन्होंने नहीं किया वो अपात्र हैं। जैसे कोई शराब पीता हो वो जिनवाणी के उपदेश का पात्र नहीं है, नॉनवेज लेता हो या शहद खाता हो वो पात्र नहीं है। अगर उसको उपदेश दिया भी जाएगा अनजाने में, जैसे उपदेश चल रहा हो और फिर उपदेशक को पता ना हो कि यहाँ पर कौन कौन महारथी बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि अपात्र है। और अगर उपदेश में कहीं कोई ऐसी चर्चा आ जाए जो तत्व चर्चा के रूप में ना हो लेकिन त्याग की महिमा को दर्शाने वाली चर्चा हो, तो फिर उसको सुनकर वो त्याग भी कर सकता है, ऐसा भी संभव है। जैसे एक मृगसेन नामक धीवर ने, मछुआरे ने, गुरु की वाणी में हिंसा के त्याग का महत्व सुनकर व्रत धारण कर लिया था। और उसने मछली पकड़ने का तो त्याग नहीं किया लेकिन जो मछली पहले पकड़ में आएगी उसका मैं त्याग कर दूंगा, ऐसा नियम ले लिया था। और उस एक नियम के कारण उसकी सदगति हो गई। बड़ी सुंदर कथा है मृगसेन धीवर की। तो जो इन पदार्थों का त्यागी नहीं है उसको त्याग का उपदेश तो दिया जा सकता है लेकिन तत्व का उपदेश नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो उसका अपात्र है। तो इस तरह श्रीपाल को जो अष्टमूल गुण दिए गए और फिर माता पिता ने निवेदन किया कि अब गुरुवर इसको ज्ञान भी देना है, विद्या भी पढ़ानी है, तो आपसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है, हम इसको आपके सानिध्य में रखना चाहते हैं। तो फिर गुरु ने स्वीकार किया और उसको श्रीपाल राजकुमार को एक नन्हे बटुक ब्रह्मचारी के रूप में उन्होंने रख लिया और शिक्षा देना प्रारंभ किया। अनेक प्रकार के विषयों का उनको ज्ञान था और वो सारे विषय धर्मोपदेश में उपदिष्ट करने योग्य नहीं थे लेकिन जब शिक्षादान का विद्यादान का प्रसंग आता है तब गुरु महाराज बहुत सारी विद्याएं विद्यार्थी को प्रदान करते हैं। तो श्रीपाल को उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें सिखलाई, ज्योतिष, सामुद्रिक, गणित, व्याकरण, छंद, अलंकार को आदि लेकर अन्य अनेक प्रकार की कलाएं, 72 प्रकार की कलाएं, पुरुष की 72 कलाएं होती है और नारियों की 64। तो 72 कलाएं भी श्रीपाल को सिखाई। और जब श्रीपाल क्रमशः किशोर अवस्था में प्रवेश हुए और जवानी में उन्होंने जब कदम रखा तब लगभग 16 वर्ष की जब उनकी उम्र हो गई, संपूर्ण शिक्षाओं से शिक्षित होकर, विद्याओं से संपन्न होकर, ज्ञानवान बनकर, विद्वान बनकर श्रीपाल गुरु से आशीर्वाद लेकर पुनः अपने माता पिता के सानिध्य में लौटे। चंपा नगरी में राजकुमार के आगमन का समाचार जो ही आया, स्वागत की भव्य तैयारियां की गई और बड़े धूमधाम के साथ विद्यार्थी श्रीपाल का भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद जब माता पिता से मिलन हुआ तो इतने लंबे समय बाद जो मिलन हुआ होगा उसका वर्णन शब्दों में तो संभव नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ महीनों के बाद अगर अपनी संतान अपने से मिलती है तो कैसी भावना होती है उसकी और अपनी। तो इतने समय बाद जब मिला राजकुमार, तब माता पिता की क्या स्थिति हुई होगी और उसकी भी क्या स्थिति हुई स्वयं। तो बड़ा सुंदर मिलन था और उस मिलन के उपरांत फिर श्रीपाल पुनः राजकीय वेशभूषा को धारण करके बड़ी भव्यता के साथ वहाँ चंपा नगरी में माता पिता के निकट रहने लगा। और रहते रहते प्रायः पिता के सानिध्य में वह राजकाज को देखा करता था और मंत्रियों की मंत्रणा को भी सुना करता था। कुछ ही वर्षों में उसने राजनीति का परिपक्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और लोकनीति को भी उसने सीखा और अनेक प्रकार का ज्ञान जो एक राजा के सानिध्य में ही राजकुमार सीख सकता है श्रीपाल ने प्राप्त कर लिया। और फिर बीच बीच में कई बार राजा अपने पुत्र को अवसर देते थे कि देखो अब ये जो मामला सामने आया है बड़ा पेचीदा है, इसका क्या समाधान हो सकता है, पुत्र अपनी बुद्धि लगाओ, हम देखना चाहते हैं कि तुम जब राजा बनोगे तो ऐसे स्थितियों में क्या समाधान दोगे। तब श्री पापाल अपने विवेक से अपनी कुशल बुद्धि से उसके इतने सुंदर समाधान देने लगे कि राजा को लगा कि अब तो ये सचमुच राजा बनने लायक हो गया। तो श्रीपाल जब 20-22 वर्ष की उम्र के हो गए तब राजा ने विचार किया कि मेरी उम्र भी कुछ ढलान की ओर है और वैसे भी मुझे पुत्र की प्राप्ति विलंब से हुई थी, प्रारंभ से तो मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, विलंब से हुआ था और आज यह बिल्कुल योग्य हो गया है। इसकी आभा देखकर सुमेरु पर्वत का स्मरण आता है और मुझे याद आता है कि जब ये रानी के गर्भ में आया था तब मेरी रानी कुंद प्रभा ने जो स्वप्न देखे थे उसमें प्रथम स्वप्न था सुमेरु पर्वत, और सचमुच मेरे पुत्र की कांति सुमेरु पर्वत जैसी है और उसकी शोभा भी निराली है, उसका वक्षस्थल भित्ति के समान विस्तीर्ण है और कटिभाग अर्थात कमर बिल्कुल क्षीण है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉन्गर द वेस्ट लाइन शॉर्टर द लाइफ लाइन, जितना मोटा पेट उतनी छोटी उम्र। और आजकल तो साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है कि पुरुष का पेट 40 इंच से अधिक न हो और माताओं में होगा 36 इंच से अधिक न हो, अगर होगा तो फिर घुटनों के जोड़ खराब हो जाएंगे, इतना वजन घुटनों पर एक्स्ट्रा आएगा, अधिक आएगा और इसके अतिरिक्त हृदय पर भी अतिरिक्त भार पड़ेगा और अन्य अनेक प्रकार से स्वास्थ्य को हानि होगी। तो श्रीपाल का शरीर बिल्कुल सौम्य था, व्यवस्थित था, समचतुरस्र संस्थान था उसका, शुभ नाम कर्म का उदय था, शुभ पुण्य प्रकृति का भी प्रकृष्ट अनुभाग लेकर के वो जन्मे थे और इसके अतिरिक्त उनका संगनन भी प्रथम संगनन था वज्र वृषभ नाराज संगनन, बिल्कुल फौलादि शरीर था उनका और बुद्धि आदि गुण भी उनके अंदर विशिष्ट थे। तब पिता ने विचार किया कि क्यों न मैं धर्म ध्यान में लग जाऊं और राजकाज अपने इस सुयोग के पुत्र को सौंप दूं। तो उन्होंने ऐसा विचार करके शुभ मुहूर्त नक्षत्र बार और तिथि का शोधन कराकर एक निमित्त ज्ञानी को बुलाकर प्रशस्त लग्न में, लग्न एक ज्योतिष का शब्द है, लग्न का अर्थ शादी मत समझ लेना, लग्न उस राशि को कहते हैं जो इस समय पूर्व दिशा में है। जो भी राशि इस समय पूर्व दिशा में है वो इस समय लग्न है। क्या समझे आप? 12 राशियां होती है और 24 घंटे में इसका पूरा परिवर्तन चलता है। कोई राशि 1.5 घंटे तक चलती है पूर्व दिशा में, फिर वो पूर्व दिशा को छोड़कर थोड़ा ऊपर उठ जाती है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, वो जिस राशि में होता है वो सूर्योदय के समय की लग्न है, और उसके बाद सूर्य और ऊपर उठ जाता है और उसके बाद वाली लग्न पूर्व दिशा में आ जाती है, फिर और ऊपर सूर्य चला जाता है, मध्यान्ह में कोई और लग्न होती है, तो लग्न परिवर्तित होते रहती है। तो उसने ज्योतिष में प्रशस्त लग्न शोध करके बिल्कुल उचित समय में श्रीपाल के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाल दिया और उस दिन बड़े धूमधाम के साथ अंग देश की राजधानी चंपा नगरी के नरेश के रूप में श्रीपाल को प्रतिष्ठापित किया गया। और उस समय श्रीपाल का सुंदर सुंदर कलशों से अभिषेक किया गया, जिसको राज्याभिषेक कहा जाता है। अभिषेक पूर्वक श्रीपाल को राजा बनाया गया और श्रीपाल ने भी बहुत सारे शपथ ली कि मैं प्रजा का अपनी संतान के समान पालन करूंगा, मैं न्याय मार्ग का सदैव अनुकरण करूंगा, मैं अपनी व्यस्त चर्या में भी कुछ समय धर्म को अवश्य दूंगा, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, धर्म का पालन करूंगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इस तरह श्रीपाल ने बहुत सारे नियम लिए और अब वो अंगराज हो गए श्रीपाल। फिर महाभारत के काल में अंगराज दूसरे हुए। अब एक ही राजा हमेशा तो चलते नहीं, समय बदल जाता है। अपनी आयु पूर्ण करके सारे मानव इस धरती को छोड़कर अपनी अपनी गतियों में चले जाते हैं, कोई हमेशा के लिए इस धरती पर नहीं रहता। राजा हरिदमन को संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्ति थी, उदासी थी, निर्विण्णता थी, इसलिए उन्होंने संसार की असारता का विचार करके स्वयं अपने आप को धर्म ध्यान में लगाया और अपना राजभार पुत्र को सौंप दिया और अनुप्रेक्षाओं का स्मरण करते हुए बार बार चिंतन करते हुए और धर्म में अधिक से अधिक अपना समय लगाते हुए वो काल यापन करने लगे और श्रीपाल का राज उसके प्रभाव से बिल्कुल निष्कंटक हो गया। अनेक शत्रु राजा भी श्रीपाल के अधीन हो गए, सब समर्पित हो गए। इस प्रकार राज्य करते करते बरसों बीत गए। माँ बाप की एक तमन्ना होती है कि कब हम पोते का मुंह देखें, मतलब कब हमारे घर पौत्र की किलकारी सुनाई पड़े। तो उनकी इच्छा थी कि श्रीपाल का विवाह हो जाए, लेकिन कर्मों को कुछ और ही स्वीकार था। श्रीपाल कोई नया जीव नहीं था, सारे जीव संसार में अनादिकाल से भव भवांतरों में 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, 4 गतियों में भटक रहे हैं। श्रीपाल भी उन्हीं जीवों में से एक था, तो उसने भी पूर्व भव में कोई कर्म बांधा हुआ था और कर्म अलग अलग प्रकार के बनते हैं। कुछ कर्म पत्थर की लकीर के समान दृढ़ होते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जो अपने भावों को परिवर्तित करने से नष्ट भी हो जाते हैं, कुछ कर्म प्रायश्चित से कट जाते हैं, कुछ कर्म तपश्चर्य से, और कुछ कर्म सैकड़ों प्रयास करने के बावजूद ज्यों के त्यों स्थिर रहते हैं। तो श्रीपाल के जीवन में भी जब माता पिता उसके विवाह की कामना कर रहे थे, तब कोई ऐसा पूर्व भव का प्रचंड कर्म, निधत्त निकाचित श्रेणी वाला पत्थर की लकीर जैसा दृढ़ कर्म अकस्मात उदय को प्राप्त हो गया। देखते देखते उसके शरीर की सुंदरता नष्ट हो गई, उसकी कांति विलुप्त हो गई, उसका वर्ण विवर्ण हो गया, उसके शरीर में कुष्ठ व्याधि, जो 18 प्रकार की महाव्याधियों में से एक गिनी जाती है, उत्पन्न हुई। तीव्र असाधा के उदय से श्रीपाल कोढ़ी बन गया। लेकिन ये तो कम आश्चर्य की बात है कि श्रीपाल कोढ़ी बन गया। उसी नगरी में और 700 वीर रहते थे, वो सब श्रीपाल के साथ साथ कोढ़ी बनते चले गए। जैसे जैसे श्रीपाल के शरीर में रोग वृद्धि को प्राप्त हुआ, वैसे वैसे उन 700 के शरीर में भी रोग वृद्धि को प्राप्त हो गया। सारे 700 एक समान उस व्याधि से ग्रस्त हो गए। सबको बड़ा आश्चर्य था कि ये क्या हो गया है। और फिर ऐसी ऐसी बीमारियां उनके शरीर में, मुख्य तो कोढ़ पर और जो बीमारियां साथ में थी उसके कारण भयानक दुर्गंध आने लगी। और उस दुर्गंध के कारण जब श्रीपाल के महल से वायु किसी मोहल्ले की तरफ प्रवाहित होती तो उस मोहल्ले के लोग उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाते, तो अपने अपने घर छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाने लगते। और ऐसा करते करते चंपा नगरी उजड़ने लगी। अंततः वहाँ के कुछ वरिष्ठ सज्जनों ने, बुजुर्गों ने विचार किया कि ऐसे में कैसे काम चलेगा, चलो हम कुछ उपाय करते हैं। सबको दुख था कि हमारे इतने प्रिय राजा आज रोगी हो गए हैं, लेकिन उस दुख के साथ में ये दुर्गंध की भी परेशानी थी। दुर्गंध ऐसी थी कि उस दुर्गंध को कोई सहन नहीं कर सकता था, तीव्र कर्म का उदय। तो ऐसी स्थिति में कुछ बड़े लोगों ने मिल करके श्रीपाल के काका वीर दमन से चर्चा की। अब इसको भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, जब ऐसा परिवर्तन हो रहा था चंपा नगरी में, तब बीच में ही जो भूतपूर्व राजा अरिदमन थे वो धर्म ध्यान पूर्वक देवलोक को प्राप्त हो गए, यानी उनकी आयु पूर्ण हो गई, उनको और बुरे दिन नहीं देखने पड़े, उनकी आयु पूर्ण हो गई। लेकिन उनके वियोग से उनकी पत्नी श्रीपाल की माता कुंदप्रभा व्यथित हो गई, आकुल व्याकुल हो गई, क्योंकि एक पतिव्रता नारी का सहारा पति होता है और उसके वियोग से वह बहुत दुखित होगी। और श्रीपाल को भी असहनीय पीड़ा हुई पिता के वियोग की, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब आयु पूर्ण करके कोई जीव प्रयाण करता है तब उसको न तो इंद्र वापस लौटा सकता है, न ही और कोई शक्ति। तो एक तो वो दुख था और दूसरा ये कि राजा रोगी हो गए हैं। तब सबने मिलकर उनके काका से, वीर दमन से वार्तालाप किया। वीर दमन ने विचार करके कहा कि श्रीपाल अत्यंत न्यायप्रिय हैं, नीति के जानकार हैं, वो निश्चित ही आपकी समस्या का कोई समाधान निकालेंगे, मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ, आप लोग चिंता मत करो। तो काका ने उनसे वार्तालाप किया। श्रीपाल ने इन सारी चर्चाओं को सुन करके अपने मन में जो विचार था वो काका के सामने रखा। श्रीपाल ने कहा कि चाचा जी, आप जो कुछ कह रहे हैं वो पहले से ही मेरे मन में है। मैं स्वयं इस बात से चिंतित हूँ कि इस दुर्गंध के कारण नगर में रहना मुश्किल हो गया है लोगों को, तो मेरे मन में एक उपाय आता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक मैं स्वस्थ ना हो जाऊं तब तक मैं स्थानांतरण करना चाहता हूँ, इस स्थान को छोड़कर कहीं और रहना चाहता हूँ। और मेरे साथ मेरे सारे वो सुभट भी रहेंगे, वो वीर भी रहेंगे जिनको रोग हो गया है, हम सब साथ में कहीं दूर रुकेंगे। तब तक यहाँ का राज्य भार, काका वीरगमन कहते हैं कि हाँ तुम्हारा विचार तो श्रेष्ठ है पर तुम्हारा वियोग मुझे सहन नहीं होगा। श्रीपाल कहते हैं कि मेरे वियोग की आप चिंता ना करें, मैं तो आ जाऊँगा समय पर लौट कर, जब मैं स्वस्थ हो जाऊँगा तो आ ही जाऊँगा। तब काका वीरगमन कहते हैं कि किसी योग्य मनुष्य को तब तक राज्यभार संभालना होगा। श्रीपाल हाथ जोड़ करके अपने काका से कहते हैं कि काका आप कैसी बात करते हैं, आपके अतिरिक्त मैं और किसको यहाँ पर राज्य सौंप करके जाऊँ, आप इस राज्यभार को संभाल लीजिए। तो काका कहते हैं कि मैं नहीं चाहता इन सब विकल्पों को अंगीकार करना, देखो मेरा भाई तो देवलोक में चला गया, मैं भी धर्म ध्यान करना चाहता हूँ। ज़रूर कीजिएगा चाचा जी, लेकिन कुछ काल तक केवल कर्तव्य मानकर इस राजभार को संभाल लीजिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है, मेरे निवेदन को मत ठुकराइए। तब काका कहते हैं कि ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और इस तरह श्रीपाल उन 700 वीरों के साथ माता को प्रणाम करके वहाँ से विदा होते हैं। माँ बहुत आकुल व्याकुल थी, एक तो पति का भी हो और दूसरा पुत्र का भी हो, तू कब लौट करके आएगा, कितने दिन में ठीक होगा। अब श्रीपाल माँ को जवाब देते हैं कि माता मुझे क्या मालूम, मैं कर्मों की अवस्थाओं को तो नहीं जानता, कोई दिव्य ज्ञानी ही बतला सकते हैं कि मेरी यह व्याधि कब नष्ट होगी, मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आऊँगा अवश्य, मैं आपको पुत्र वियोग में व्यथित नहीं देखना चाहता, मैं आऊँगा अवश्य, पर प्रजा के हित में मुझे यहाँ से जाना होगा। और मैं आपको अपने साथ इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि इससे लोक निंदा भी होगी और आपको भी अनावश्यक कष्ट पहुँचेगा, मेरे साथ आप कहाँ जाओगी, और कर्म तो मैंने किया है उसका फल मैं भोगूंगा, मैंने जो कर्म किया है उसका दंड आपको क्यों दूँ। इसलिए माता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप घर पर ही रहिए और फिर धर्म ध्यान आदि जो भी करना हो आप करिए, मैं आपको क्या उपदेश दूँ, आप तो मेरी पूज्य माता हैं। इसलिए मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप खेत खिन मत होना, मैं आपसे विदा लेता हूँ। और श्रीपाल माँ से विदा लेकर चंपा नगरी के बाहर एक वन था, उसके एक उद्यान में उन 700 वीरों के साथ ठहर जाते हैं। सुविधा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सुविधा सुख नहीं है। प्राय संसारी जीवन में भ्रम होता है कि सुविधा ही सुख है, वास्तव में सुविधा अलग वस्तु है और सुख अलग वस्तु है। पहला सुख निरोगी काया, अब काया निरोगी नहीं है तो फिर सुख कहाँ है। अब उस बीमार हालत में श्रीपाल उस उद्यान में ठहर गए। सब सेवक साथ में थे, सब कुछ था, औषध भोजन वस्त्र आभूषण सारा ठाट बाट साथ में है, लेकिन रोग की बला लगी हुई। तो वहाँ पर अपना काल यापन करने लगे। और फिर इसके बाद क्या हुआ बाद में देखा जाए। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु इनको सदा नमन, इनके नमन से मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हूँ मेरे मन वचन, अरिहंत जय जय सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी, जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी, नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को, जावाणी के ज्ञान दे सुझे।